राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23/2 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ।
नारायण 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 नारायण। परमाणु सा कोई बात हमने नहीं सोची है।
समस्त दृष्टि और समस्त दृष्टि जो भेद को बचाया गया
क्या कह रहे
समदृष्टि समत्व दृष्टि और समग्र दृष्टि इसका भेद नहीं बनाया गया। समदृष्टि
समदृष्टि
समत्व दृष्टि
समदृष्टि समत्व दृष्टि यही हुई
वो ऐसे ही बोले हैं और समग्र दृष्टि
समदृष्टि समत्व दृष्टि तो एक ही होता है। समदृष्टि कह दो समत्व की दृष्टि कह दो तो भाव कर कह दिया वो शब्द कर कह दिया बात एक ही है। और समग्र दृष्टि समग्र तो सब संसार मात्र को देखना समग्र दृष्टि है और अंतःकरण में समता रखना समता पूर्वक देखना है वो समत्व दृष्टि समदृष्टि है। समदृष्टि में विशेषित है इसमें सम गीता का सिद्धांत है समता जिसमें राग द्वेष नहीं हर्ष शोक नहीं अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर कोई अंतःकरण विकार न रहे वो समदृष्टि है। संसार का स्वरूप तो अनुकूलता प्रतिकूलता ही है संसार का स्वरूप ही है इसी का नाम संसार है। कोई घटना अनुकूल है कोई प्रतिकूल है कोई व्यक्ति अनुकूल है कोई प्रतिकूल है कोई परिस्थिति अनुकूल है कोई परिस्थिति प्रतिकूल है कोई क्रिया अनुकूल है कोई क्रिया प्रतिकूल है देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सब में अनुकूलता प्रतिकूलता भरी हुई है। अनुकूलता प्रतिकूलता भी संसार का स्वरूप है तो सब संसार को देखना ये समग्र दृष्टि हुई और अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर अंतःकरण में हर शोक राग द्वेष हलचल भय उद्वेग ये न हो दृष्टि है तो समदृष्टि है ये रहनी चाहिए एकदम।
एक अंतःकरण में समता आ गई मानो हर एक शोक राग द्वेष न हो ऐसा अंतःकरण हुआ तो गीता उसको सिद्धि का पद दे देती है सिद्धि हो गई और दूसरे सब लक्षण होकर समता नहीं हो तो गीता सिद्धि नहीं देती। एक समता आ जाए ठीक तरह से गीता की दृष्टि से पूर्ण हो गया। आप लोगों से प्रार्थना है निवेदन है कहना है कथन है कि एक बात का ख्याल रखें हृदय को विचलित न होने दें। अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे जहां तक बने हृदय को सम रखो भीतर से मन में समता रखो। समता वाले की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं सर्गो ये साम्य स्थित माना अनुकूलता रूप प्रतिकूलता रूप संसार हुआ तो यही उतरित सर्ग कि ये शाम मन साम्य स्थित जीवित अवस्था एव सर्ग संसार जित संसार वो एक बात सही ये सब मन साम्य से कम मन साम्य अवस्था में जैसे है उसमें हलचल नहीं है राग द्वेष नहीं है क्रिया करो सब काम करो ठीक तरह से करो विवेक पूर्वक करो सावधानी पूर्वक करो परंतु विषमता ना आवे ठीक हो जाएगा।
अब किसी तरह से करो, ज्ञान योग से करो, कर्म योग से करो, भक्ति योग से करो, लय योग से करो, हठ योग से करो, राज योग से करो, ध्यान योग से करो, किसी तरह से करने का प्रकार चाहे हो। जैसे हिसाब करते हैं तो जैसे गुणा, अब इतना का इतने से गुणा करना है, वो भंज गुणा और स्थान गुणा दो तरह से गुणा होते हैं। टोटल ठीक आना चाहिए, पहले अंगुलियों पर कर लो, यू कर लो, करने का प्रकार आपकी मर्जी से करो, पर टोटल ठीक सही आना चाहिए। तो हरेक कार्य करते हुए समता रहनी चाहिए, समता टोटल समता, सम्बुद्धि विशेष है, सम्बुद्धि है श्रेष्ठ, होता समतम योग उच्चते। गीता का योग यही है, जैसे पातंजल योग दर्शन के सिद्धांत है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। गीता की परिभाषा है कि समत्वम योग उच्चते, समता रहे, वो योगी हो गया। चित्त वृत्ति निरोध के लिए एकांत और अकेला बैठ करके चिंतन विचार करके करना पड़ता है, और समदृष्टि में ये नहीं कि एकांत बैठ करे, एकांत बैठो, कार्य करो, जो जो भक्त पर काम समझ में आ जाए वो करो विधि पूर्वक, परंतु करते हुए समता अंतकरण बनी रहे, ये ख्याल रखो, राग द्वेष हर्ष शोक न हो, ये खास बात है। विषमता आ जाए तो सावधान हो जाओ, भगवान को याद करो, ध्यान करके उस समता पर स्थित हो जाओ, समता में फिर भगवान से प्रार्थना करो, पुकारो भगवान को, अथवा अपने उद्योग से करो, चित्त में समता रहे, हर शोक नहीं, किसी से राग किसी से द्वेष ये नहीं, चल चल के आवेगी परिस्थिति, अनुकूल भी आवेगी प्रतिकूल भी आवेगी, क्यों आएगी, ये तो संसार है, यही अनुकूलता प्रति रूप रूप में, इस बात से कह यही उत्तेजता स्वर्ग, ये स्वर्ग जो संसार है यही अभी अभी जीत लिया, यहाँ ही किसने जीत लिया, ऐसा मन साम्य स्थित, जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, समता में आ गया, अब योग है ये, अब इसको करना और कुछ नहीं है, समता आ गई, पूर्ण हो गया काम। समय है, ये सम परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसका मन निर्दोष और सम हो गया उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। विष्णु पुराण है समत्वम आराधनम अच्युतस्य, अच्युतस्य आराधनम समत्वम, समत्वम अच्युतस्य आराधनम, समता है भगवान की आराधना है, भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, भगवान का ध्यान है, भगवान में समाधि है, समत्वम आराधनम अच्युतस्य, अच्युतस्य आराधनम क्यों के समत्वम, समझना है भगवान की आराधना है, क्यों सम भगवान का स्वरूप है, उसमें सिद्ध हो गए तो भगवान के साथ एकता है आपकी एकदम, तो समदृष्टि है वो बढ़िया है, समत्वम योग उच्चते, निर्दोष आगे सबम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म चेतसा। शेर जी ने इसकी व्याख्या करते हुए बरनी से वहां उदाहरण दिया था, हम भरनी से वहां बैठते हैं ना, स्वर्गाश्रम में है, भरनी से सत्संग होता था, बढ़ चला गया अब तो, सत्संग होता था तो वहां क्या बात है कि पूर्व की तरफ भी पहाड़ है ऊंचे, पश्चिम तरफ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और गंगा जी बहती है, तो गंगा जी तो भीतर भीतर से आती है, क्यों दीवार देखा जाए तो पहाड़ों की दीवार लगी हुई है, एक तरफ गंगा जी बहती है और तीन तरफ पहाड़ आ जाते हैं, पहाड़ तो यहाँ परकोट है, वहाँ
स्वर्ग समय बड़ नीचे पर कोठा है मानो पहाड़ आए हुए है और पहाड़ों के भीतर से नीचे और गंगा जी आ रही है। वो गंगा जी इधर इधर किनारे से लेकर इधर किनारे से आ गई इधर किनारे आ गए पहाड़ों का ऐसा प्रकोट है वहाँ। तो शेठ जी ने कहा कि जब पूर्व में सूर्य उदय हुआ तो सूर्य के दर्शन नहीं होते कारण कि पहाड़ है ऊंचा पहाड़ की छाया में रहते हम वहां बैठे रहते हैं। तो पहाड़ में बैठे हुए हम कह सकते हैं कि सूर्य उदय हो गया किसी क्या पता भी सूर्य उदय हो गया सूर्य दिखता तो है नहीं पहाड़ है ऊंचे ऊंचे कहते सामने जो पहाड़ है पश्चिम की तरफ उस पहाड़ की चोटी पर घाम आया हुआ है तावरा आ गया आतप आ गया प्रकाश होकर के और ठीक किरण पड़गी सूरज की वहां तावरा आ गया दिखता है। तो वहां ताप आ गया उससे सिद्ध होता है कि सूर्य उदय हो गया चाहे सूरज भगवान खुद हमारे को न दिखे पर सूर्य बिन वहां आतप कहां से आया सूर्य उदय हो गया। तो सामने पहाड़ पर आतप आने से सूर्योदय हो गया ये निश्चय होता है। ऐसा ही जिसके मन में समता आ गई तो वे तत्व को प्राप्त हो चुके तत्वज्ञ है जीवन मुक्त है महापुरुष है बिल्कुल पता ये पहाड़ का ताप है जिससे मन के ऊपर समता आ गई ठीक तरह ये साम्य स्थितंग मन मन साम्य और तम से हो गया तस्मात ब्रह्म स्थित इस वास में ब्रह्म स्थित है। अगर ब्रह्म स्थित न होते तो मन में क्षमता नहीं आती मन में क्षमता आ जानी चाहिए। मन में राग द्वेष होते हैं हर्ष रोग होते हैं भय उद्वेग होते हैं हलचल होती है तो बहुत अच्छे विद्वान है पंडित है समझदार है व्याख्यान दाता है बहुत प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं बहुत बातें लिख देते हैं पुस्तकें लिख देते हैं परंतु मन में क्षमता नहीं आई है तो गीता उसको सिद्धि का प्रसार नहीं देती। आप ज्ञान योग में चलो ध्यान योग में चलो कर्म योग में चलो भक्ति योग में चलो अनाशक्ति योग में चलो आप जिस किसी मार्ग से चलो इनके सिवाय आपके मन गलत किसी विचार से कर लो पर टोटल आंसर है ये अंतकरण में क्षमता विकार न हो। देखो एक विकार होता है एक ज्ञान होता है अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होना दोषी नहीं है वो तो जैसा सामने पदार्थ होंगे जैसा विषय होगा उसका अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो जाएगा। कोई गाली बोलता है कोई भगवान का नाम लेता है कोई तिरस्कार करता है कोई सत्कार करता है कोई मान करता है कोई अपमान करता है कोई निंदा स्तुति करता है ये तो संसार का काम है। हमारे मन में क्या हो रहा है रंग बदलता है क्या रंग बदलता है तो ठीक है ढंग ठीक नहीं है अपना रंग नहीं बदलता ठीक है ज्ञान सबका होता है उत्तर भी यथा योग दिया जा सकता है उसमें लोगों को प्रतीत भी हो सकता है कि राग द्वेष हुए परंतु अपने अंतकरण में ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें राग द्वेष तो नहीं हो रहे हैं हर्षोग तो नहीं हो रहे हैं हलचल तो नहीं हो रही है व्याकुलता तो नहीं हो रही है पदार्थों को लेकर के परमात्म तत्व की प्राप्ति के विषय में देरी होने से एक उत्कंठा होती है जागृत होती है एक उत्कंठा अभिलाषा होती है वो दोषी नहीं है वो तो जिज्ञासा है परमात्म तत्व को जानने की एक इच्छा है प्रबल वो दोषी नहीं है वो तो बड़ी लाभदायक है। संतों ने तो वाणी में कहा है कि भगवान ने ये विरह पठाया विरह हमारे लिए भेजा है भगवान के बिना हिलिभरी हरि बिना रहो न जाए मीनाबाई कहते भगवान के बिना रहा नहीं जाता ये व्याकुलता है ना भगवान के मिलन की तत्व ज्ञान की मुमुक्षा लगी हुई है मोक्ष की इच्छा है ये हलचल है ये हलचल हलचल नहीं है ये तो हलचल मिटाने वाली है राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानिन्द्रियैः सर्वम् आत्मवश्ये विधेयात्वा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते। संशेषो यासु बुद्धि परिवतिष्ठते। तो राग द्वेष रहित होने से चित्त में एक प्रसन्नता होती है। एक प्रसन्नता होती है अनुकूल भोग मिलने से, अनुकूल पदार्थ मिलने से, अनुकूल व्यक्ति मिलने से, अनुकूल द्रव्य मिलने से प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता होती है दोषी। राग द्वेष रहित होने से प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता ठीक है। जैसे वो प्रसंग चला था, मैंने कहा था कि साधारण आदमी को कोई कुछ दे कह दे तो पैसे दो चार पांच सुनाए बिना संतोष नहीं होता। अगर वो नहीं सुनाता है तो लोग ये माई अनुसार ही कर देती है। मैं तो होती पांच चार चार सुनाती एक की, उसमें बाहर भी समझते हैं, नहीं सुनाने में कायरता समझते हैं। तो कायरता से भी चुप रह सकता है और समता से भी उद्वेग नहीं हुआ, शांति नहीं। तो साधक जब मन में उद्वेग नहीं होता और वो प्रतिकूल परिस्थिति में दूसरों का किया हुआ अपमान तिरस्कार उसको सह लेता है ठीक तरह से, तो एक प्रसन्नता होती है और भगवान की कृपा मानता है। आज ऐसा मौका आया था तो विचलित हो जाता मैं, परंतु तो भगवान की कृपा से विचलित नहीं हुआ। समझ पर हम समझा, समाधान रहा, समाहित रहे, ठीक तरह से रहा, तो उसको लेकर उसको प्रसन्नता होती है। तो ये प्रसन्नता दोषी नहीं है। इस प्रसन्नता से परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति प्रसादे सर्व दुखाना मानी, उस चित्त की प्रसन्नता से संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि प्रतिपत्ति से, और बहुत जल्दी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाता है, सुस्त की हो जाता है, तो वो दोषी नहीं है। मानो राग द्वेष पूर्वक व्यवहार करके मन में द्वेष का बदला द्वेष देने पर भी एक संतोष होता है, वो संतोष काम का नहीं है। परंतु हम सब सह लेते हैं, निर्विकार रह जाते हैं, तो ये निर्विकारता बड़ी लाभदायक है। निर्विकार, राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, दुख नहीं। जैसे काकभूषुंडी ने अपना वर्णन किया, लोमस ऋषि के पास पहुंचे तो लोमस ऋषि तो ज्ञान की बात सुनाते हैं और ये भक्ति की बात पूछते हैं और विवाद हो जाता है आपस में। विवाद में चलते चलते लोमस ऋषि तेज हो गए, कहते हैं तुम वायस हो, समझते हैं तुम डरता है कौए की तरह और उत्तर प्रत्युत्तर बहुत करता है, छपरी हो पक्षी चंडाल जा, कौआ बन जा, चंडाल पक्षी बन जा, पक्षी होंगे चंडाल पक्षी, ऐसा दे दिया साहब। साप दे दिया तो साप देने पर भी काकभूषुंडी की हलचल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वे कहते ऋषि को दोष है ही नहीं, ऋषि का कोई अवगुण नहीं है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जो कहलाए हैं भगवान कहला रहे हैं, इसके हृदय में अंतकरण में भगवान विराजमान है, वो भी कहला रहे हैं। ये थोड़ी कहता सबके प्रेरक तो परमात्मा है, सब कर परम प्रकाश जो ही राम आवादा अवधपति सोई, परम प्रकाश तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा की तरफ दृष्टि रहने से वे कितना ही कुछ कह दे, साफ दे दे, कौआ बना दिया, तो नहीं कुछ भय न दीनता आई, ना भय आया न दीनता आई, इस प्रकार रहा ना, भय भी नहीं हुआ कि क्या दशा होगी, दीनता भी नहीं आई, कब मैं क्या करूं, कौआ बन गया मैं तो। ब्राह्मण शरीर मनुष्यों में, ब्राह्मण शरीर पक्षियों में, चंडाल शरीर मनुष्यों में, ब्राह्मण सर्व पूज्य होता है ब्राह्मण, चारों वर्णों में पूज नहीं है। साप तापड़ तार कह तार कह तारा करे साप करे तारना करे तो भी विप्र पूज्य, संता पूज्य होता है, पूजन लायक होता है।
ऐसे ब्राह्मण शरीर, और बात करते हैं भक्ति की, भगवान की बात पूछते हैं। कोई अनुचित विचार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार में कोई घटपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है और कोई इच्छा ही नहीं है, भगवान की बात पूछते हैं। और वो समझते हैं कि अच्छा है ब्राह्मण है, ज्ञान की बात सुना दे स्वामी से, वो भी करता है अवहेलना करते हैं इस तरह से। उनकी अवहेलना करने का आशय नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में लालसा लगी है भगवान के बाल रूप दर्शन की, वो दर्शन मेरे को हो जाए फिर मैं निर्गुणोपदेश सुनूंगा आपका, अभी मैं नहीं सुनूंगा, अभी तो मेरे केवल इच्छा ऐसी है, फिर सुने हम निर्गुण उपदेश फिर सुनूंगा भगवान के अवधेश को देख लू ठीक तरह नेत्रों से, ये मेरे देखने की इच्छा है जोरदार। तो उनकी इच्छा थी कोई अपमान करना नहीं था, ऋषि का अपमान करने की भावना ही नहीं, अपनी इच्छा है अपनी लालसा है वो प्रकट करना है, मैं तो उसको चाहता हूँ। इस पर ऋषि तेज हो गए, श्राप दे दिया, श्राप दे देते ठीक है। तो वो ऋषि महत्शीलता देखी, बड़ी शीलता देखी, उस स्वभाव ऐसा सो में देखा तो महाराज दया आ गई। लोग ऋषि संत है उनको मामूल तो रही है, बुलाया, बुला करके प्यार पूर्व हम सब सुनाया, रामायण बात सुनाई, राम जी का ध्यान बताया, सबको सुनाया। और फिर वरदान दिया, तुम जहां रहोगे योजन पर्यंत माया व्याप ये नहीं स्थान बनाओगे। तो कहा कि भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हूं, मैंने भक्ति का पक्ष लिया, ज्ञान का पक्ष नहीं लिया, उसका खंडन किया। भक्ति पक्ष हट कर ही रहूं, दिए महामुनि साहब, महामुनि साहब दे दिया, परंतु साप के साथ साथ मुनि दुर्लभ भर पाए, मुनियों को भी नहीं मिलता, हरेक संत को नहीं मिलता, आश्रम आश्रम में योजन पर्यंत कोई माया नहीं व्यापेगी, मुनि दुर्लभ भर पाए हो, देखो भजन प्रताप। तो भजन क्या हुआ, समत तुम्हारा धर्म अच्युत, ये भगवान की आराधना है, भजन का प्रताप है। तो वे कितने तेज हुए कुछ भी हुए तो अपने तो शांति से काम लिया, महाराज ने ठीक है, भगवान ने कृपा की हमारे उद्देश्य दिया। कौए का शरीर अब जाना हो तो पहले से ज्यादा पहले ज्यादा देरी लगती थी, अब उठ कर चल जाएंगे, बढ़िया काम हुआ, बहुत जल्दी काम हुआ, लाभ भी हुआ है। समझे, पूछा भी है कि कौए का शरीर आप धारण क्यों किया, कि कौए शरीर से मैंने लाभ हुआ है, इस बात ये शरीर मेरे को प्यारा लगता है, कौए ही बनते हैं। रघुनाथ जी महाराज अवतार देते हैं तो छोटा कौआ बनकर के पास हो जाते हैं, चरण जाते हैं, कूदते कूदते कौ चलता है टेढ़ा कूदता है, चरणों में तो निकल जा रहे थे रघुनाथ जी महाराज, हंसते हैं यू करते हैं, यू पकड़ना चाहते हैं, यू करते हैं, यू करते हैं, तो दूर हो जाता है, और जाकर उड़ कर चले जाए दूर तो निकट आते हंसते हैं, दूर जाए तो रोने लग जाए। छोटे बालक चेहरे बालक के मन में प्रतिकूल क्या है, बाला नाम रोदनम बलम, बालकों तो रोना ही बल है, ये ताकत है, सब घर वालों को नचा ले एक रोने के पर इतना बल है ये। पक्षी नाम बल माकाशम, पक्षियों को घर में तो खट उड़ जाए बस, आकाश में उड़ जाए आपत तो बल आकाश है उनके, और बालों के बालकों को तो रोने का बल है, तो काक भूषण चल रहा है दूर तो रोने लग जाए, नजीक आ जाए हंसने लग जाए खुश हो जाए, चरना में जाओ चले तो भागे वहां से दूर, कहा आ गए नजीक चलो भाग तो पूप दिखाई, पुआ दिखा वाले खाले खाले ले दे 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 आ जाए, ऐसे करते हैं भगवान। काक भूषण से राजी बहुत रहते हैं, भगवान जैसे भक्त को प्यारे लगते हैं ऐसे भगवान को भक्त प्यारे लगते हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यम। तो उनके मन में ये बात आई, प्रशंसा नहीं आई, तो ऋषि भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे ऋषि को ही कहा, देखो भजन प्रताप, मंजूर पर पायो, देखो भजन प्रताप। तो भजन क्या हुआ, समता हुई, राग द्वेष नहीं, हरिक शोक नहीं, ताड़ना कर दे कुछ भी नहीं दे, साफ दे दे, वरदान दे दे, तो कोई हर से हर कुछ शोक है, कि चिंता है न भय है न उद्वेग है न अड़चन है, अपने बात पर जुटे हुए। घटना जो प्रतिकूल दृष्टि है ना, हरेक भाई बहन ध्यान दें, हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है, क्या वो भगवान के भी प्रतिकूल है क्या? ऐसा कौन आचरण जो भगवान से प्रतिकूल करे? भगवान के प्रतिकूल कौन कर सकता है, किसकी ताकत है? तो भगवान के तो अनुकूल है, और भगवान के मत में अपने मत में ला दिया। एक बार शेर जी ने बात कही थी, कई बात कहती वो बात याद आ जाती कोई कोई, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि हमारे प्रतिकूलता आती ही नहीं, हमारे प्रतिकूलता आती ही नहीं। ये क्या बात है, दुनिया में प्रतिकूलता प्रतिकूल आती, आपकी प्रतिकूलता आती ही नहीं, क्योंकि हमने तो अपने आप को भगवान को सौंप दिया। अनुकूलता तो भगवान की, प्रतिकूलता भगवान की, प्रतिकूलता तो हम भगवान की मर्जी मानते हैं कि भगवान की मर्जी है, हमारी प्रतिकूलता क्या आई? भगवान की अनुकूलता मान अनुकूलता मिला दी हमने, तो भगवान के तो प्रतिकूल होता नहीं। भगवान शिक्षा भी देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, तो उसमें प्यार होता है नहीं। लाल ने तारने मातुर नाकारम यथार्थ, जैसे माँ है छोटे बालक का पालन करती है, वो बोगा चू तभी ये कर दे, कभी कभी छोटे छोटे दांत आए अभी शुरू हुए ऐसे कर देता है, तो उसको तो गुस्सा आ गया, बच्चे को तो गुस्सा आ गया, माँ छोड़ देते बोले काटता की मरे तो क्या वो माँ मारती है उस समय, क्या माँ के मारने का तात्पर्य है? उसकी उद्विग्नता दूर करने के लिए काटा क्या मैंने, क्या द्वेष हो जाता है माँ के मन में, भैर हो जाता है बच्चे से। तो लाल में प्यार करने में, गोद में लेने में, इधारे में प्यार करने में, हृदय लगाने में प्यार दिखता है, और मारने में मार दिखती है, मार दी मार पड़ती है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो जोर से ही मार देती है, तो फिर भी माँ की गोदी में घुसता है मार रही है, भाग जाए तो वही खड़ा रहता है सामने। वह आप परीक्षा कर रहे ना, जब माँ मारे बच्चा भागे वहां से, दो चार पांच वर्ष का हो गया अब भागता है, वो भाग कर जाता है तो माँ खड़ी रहती है सामने खड़ा रहता है, माँ भागे दौड़ दो तो अगर ही भाग जाता है, माँ खड़ी रहे तो चट माँ के सामने खड़ा रहता है, पीठ नहीं देता सामने कर देता माँ के सामने देखता है। ऐसे समय में आप जाकर परीक्षा कर लेना, उसको कर दे, देख मिश्री दूंगा, ये लड्डू दूंगा, आ जा मेरे पास, छोड़ दे माँ को, आप बात मानेगा नहीं, खिलौना दे दो, खाने को दे दो, प्यार करो, गोदी दे दो, माँ के सामने देखेगा अरे तो माँ क्रूर है, तेरे को मार रही है, पीट रही है, छोड़ दे माँ को, अब बात मानेगा नहीं। तो लाल ने ताड़ रे, लाल में करो चाहे ताड़ में करो, बालक के ऊपर माँ की अकरुणा नहीं होती, अकृपा नहीं होती, माँ पर क्रोध नहीं होता, माँ के मन में बच्चे का अनिष्ट करने का भाव पैदा नहीं होता, चाहे वो प्रतिकूल से प्रतिकूल चले, गुस्सा भी आ जाए माँ को, पर बच्चे का अनिष्ट कर दे ये माँ से होता नहीं है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रतिकूल चलने पर भी ठाकुर जी अनिष्ट नहीं कर सकते, काज हमारे साथ हुई तो हुई। रावण ने क्या किया, प्राण प्रिया सीता जी को ले गया, दुख देता है, कष्ट देता है, वहाँ जंगल वहाँ बैठी है वृक्ष के नीचे, बरसा आवे तो वृक्ष नीचे, हवा चले तो वृक्ष के नीचे, ठंडी पड़े तो वृक्ष नीचे, गर्म गर्म हवा चले तो वृक्ष के नीचे, एक बड़ी भाई तपस्वी बैठी है, इतना कष्ट होता है। कष्ट हो जाए पर दुख नहीं होता है, कष्ट एक और चीज है, दुख एक और चीज है, दुख तो विषय में हलचल हो तो इसमें तो बस नाम अपार उद्देश्य ध्यान तमार को पाठ, दुख में प्राण चले जाना चाहते है ना, दुख बहुत जलन होती भीतर में, परंतु प्राण नहीं जाते, नाम रूपी पहरा लग रहा है, राम 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 राम, ध्यान है वो कपाट है, लोचन निधि पद्धति भगवान के चरणों में दृष्टि लगी, ये ताला है, पहरा लग रहा है, कपाट दिया हुआ है, ताला लगा हुआ है, प्राण जाए कहीं बात, तो प्राण जाने का रास्ता नहीं मिलता, किसी से जाओ कोई गड़ी मिलती ही नहीं, दुख में भी भगवान का स्मरण है। हनुमान जी ने भी आकर कहा कि महाराज सीता जी का दुख बड़ा भारी विशाल है, विपत्ति विशाला, सीता के लिए विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भर दीन दयाल महाराज, वो तो विपत्ति न कहने से ठीक है, इतनी विपत्ति आती है। रघुनाथ जी ने कहा कि मेरा भजन करता है उसकी स्वप्न में भी कहीं विपत्ति आती है, कहा हनुमान विपत्ति प्रभुष होई, अब साफ से तू हनुमान जी अब सावधान हो गए, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई, आपका सुमिरन भजन नहीं होता तब विपत्ति होती है, वो निरंतर हो रहा विपत्ति का है, वो विपत्ति है ही नहीं, बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति विपत्ति नहीं होती, भीतर की हलचल विपत्ति होती है, तो भगवान के भक्त होते हैं भीतर में हलचल नहीं होती, समत तुम आराधन मत्य, तुझे भगवान की आराधना, भगवान का ध्यान है, भगवान का चिंतन है, साम्य अवस्था में मन स्थित है, तो बाहर से चाहे कठोर से कठोर आवे, भगत पर अन्न भी न मिले, जल भी न मिले, सोने को जगह नहीं मिले, आराम करने को जगह नहीं मिले, कष्ट हो, प्रभु से कोई दुख नहीं होता, एक होता है दर्द, एक होता है दुख, दर्द और दुख दो चीज है, जैसे हाथ कट जाए तो दर्द होता है, दर्द तो यहाँ होता है, हाथ कट गया वहाँ दर्द होता है, दुख हृदय में होता है, चिंता होती है, अब क्या करेंगे, हाथ कट गया कैसे व्यवहार करेंगे, ऐसे तो दुख होता है, तो दुख नहीं होता दर्द होता है, दर्द तो होता ही है, जीती चमड़ी है जितना हाथ है कटेगा तो दर्द तो होगा, तो दर्द होना है वो कोई बड़ी बात, कोई बड़ी हानि नहीं है, दुख होना हानि है, चित्त में दुख नहीं होता, घाटा लग जाता है तो ही परमात्मा की कृपा मानते हैं कि भगवान ने कृपा की, भगवान की कृपा हो गई, इधर काम पड़ा, मैंने कहा सिर दर्द हो रहा था जोर से, मैंने कहा भगवान की कृपा है तो भगवान की कृपा हो गई, हमारी तो बड़ी पीड़ा हो रही है, आपकी भगवान की कृपा होती है, भगवान ही बहुत बड़ी कृपा है, अब कृपा कैसे समझ में आ, दर्द हो रहा है,